हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 34 एंड 35। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमस्ते स्त्वरिषभाय सात्वता विदूरकाष्ठाय मुह कुयोगिनां नीरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्राह्मणीरंस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र शवसे नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद पुलकशा आवीर शुंभा यवनाथ सादयो ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवेष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं विदि स्वलक्षणा प्रा दुरभूत् किलास्यत समीरिषीणां ऋषभ प्रसीदत। भूतैर्महते य इमां पुरो विभु निर्माय शीते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मकः सोलंकृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखं गुरुहासं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। दूसरे स्कंद अध्याय 9 जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर देना। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि क्षमा तो ब्रह्मा जी को भगवान अपने विषय में बता रहे हैं। जिसके भगवान ने कल बताया कि जब सृष्टि का प्रारंभ नहीं हुआ था, सृष्टि के प्रारंभ से पहले भी मैं था और सृष्टि के बीच में भी मैं ही हूँ। जब मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था तब इस सृष्टि की कारण रूप भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं हूँ और प्रलय के बाद भी जो बाकी बचेगा वो भी मैं रहूंगा। और उसके बाद आज भगवान बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। ये बात बहुत ही अत्यंत सुंदर और श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही विस्तार से इसको हमें समझाया है। तो भगवान के विषय में जब हम भगवान के मुख से सुनते हैं तभी वो वास्तविकता जो है वो हमें पता चल सकती, क्योंकि हम सब एक बूंद की तरह हैं और बूंद से कितनी भी विशाल क्यों न हो जाए समुद्र की महिमा नहीं बता सकती। समुद्र जब स्वयं बताएगा ना तभी वो अपनी वास्तविक महिमा बता सकेगा, है ना। उसी तरह भगवान समुद्र हैं और जीव एक बूंद की समान है, कितना भी बोले क्या बोलेगा। लेकिन जब भगवान अपने विषय में बताते हैं तभी वास्तविकता भगवान की पता चलती है। और आज भगवान अपने विषय में बहुत ही सुंदर रीति से बताते हुए कहते हैं रितीथम यत् प्रतीता न प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। रितीर्थम यत् प्रतीत न प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। रितीर्थम यत् प्रतीत न प्रतीत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। शब्दार्थ रितेर्थम यत् प्रतीयेत, रितेर्थम मतलब रहित, अर्थम मतलब सार, यत् यानी जो, प्रतीयेत यानी प्रतीत होता है। इस संसार में जो भी आपको सार युक्त प्रतीत होता है न प्रतीयेत चात्मनि, न मना नहीं, प्रतीयेत मना प्रतीत होता है च यानी तथा आत्मनि यानी मेरे प्रसंग में, अगर वो मुझसे संबंध नहीं है। रित्यर्थम मतलब अगर मुझसे संबंधित नहीं है, अगर तुमको आकर्षित कर रहा है, सार युक्त लगता है तो उसके अंदर कोई सार नहीं है। तद विद्यादात्मनो माया, तत्मना वह विद्धित, विद्यात्मना तुम्हें जानना चाहिए, आत्मना यानी मेरी माया यानी वो मेरी माया है। इस संसार में हर वो वस्तु जो भगवान से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इसमें कुछ अट्रैक्शन है और हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं तद विद्यादात्मनो माया, तो समझो कि ये क्या है, मेरी माया है। यथा भासो यथा तमः, यथा मना जिस प्रकार, आभास यानी प्रतिबिंब, यथा जिस प्रकार, तमः यानी अंधकार। जब अंधकार होता है तो अंधकार के समय जो आभास होता है, प्रतिबिंब होता है ना, उसको हम समझते हैं कि इसमें कुछ वास्तव, प्रतिबिंब होता है अंधकार, केवल छाया होती है लेकिन फिर भी हमें वो ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ वास्तविकता है। फिर रोशनी होती है, लाइट ऑन करते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं, सांप नहीं रस्सी है, है ना। तो जो कुछ भी वस्तु यदि भगवान से संबंधित नहीं है और हमें लगता है कि ये अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, सार युक्त है, आकर्षित है, तो वो क्या है, भगवान कहते हैं विद्यादात्मनो मायाम, उसे केवल मेरी माया ही समझो। अनुवाद देखिए, हे ब्रह्मा जो भी सार युक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तो भगवान बोलते हर वो वस्तु जो तुम्हें सारयुक्त लगती है यदि उसमें उसके साथ मेरा संबंध नहीं है तो उसकी कोई वास्तविकता ही नहीं है। जैसे प्रतिबिंब की कोई वास्तविकता नहीं, अंधकार में कोई प्रतिबिंब अगर फील भी हो रहा है तो उसका कोई वास्तविकता ही नहीं है। उसी तरह भगवान से जो पृथक है, जो भगवान से संबंधित नहीं है, भले वो कितनी भी महत्वपूर्ण दिखे, भगवान बोलते हैं उसकी कोई वास्तविकता ही नहीं है। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे हमको, इस तात्पर्य को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष होता प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्राकट्य की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रियाएं, इसका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व से संबंधित है। भगवान ने कहा उससे पहले भी मैं था, सृष्टि के अंदर भी मैं ही कारण स्वरूप हूँ और प्रलय के बाद भी मैं ही हूँगा। तो जो कुछ भी क्रिया है, चाहे उत्पत्ति हो, पालन हो, विकास हो, वो सब क्यों है? भगवान के। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। क्योंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा विच्छेद यानी भगवान की दैवी माया या महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा सत्य नहीं वरना ब्रह्म पूर्ण है। तो यहाँ भगवान श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो दो तरह की माया होती, एक योग माया और दूसरी महामाया। योग माया का काम क्या है? हर वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष। योग माया भगवान से मिलाने वाली होती है और महामाया भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया, वो ऐसी माया होती है जो जीव को भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा, भगवान से दूर करने के लिए उसको लालचाती है, अलग अलग वस्तुएं प्रदान करके जो उसको आकर्षित करें और भगवान का आकर्षित जो है वो उसको प्राप्त ना हो सके, इसलिए माया जो है वो सदैव परीक्षा दे रही होती। लेकिन फिर भी दोनों माया भगवान की ही शक्ति है और अगर हमें माया से पार जाना है तो उसका केवल एक ही तरीका है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरणार्थ रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य यानी मृषा तो नहीं है। रस्सी ब्रह्मग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्प मान लेना ब्रह्म पूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने के पर ब्रह्म है। भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा के ये भौतिक अस्तित्व जो है वो मुझे आनंद प्रदान कर रहा है, वो क्यों है? भगवान की शक्ति से युक्त हो त्यक्त हो चुकने के ब्रह्म। रस्सी ब्रह्मग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्प मान लेना ब्रह्मपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्रक्त हो चुकने पर ब्रह्म है किंतु असत नहीं है। यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार से में सत्य का प्रतिबिंब यानी छाया कहलाती। मतलब जब जीव ये सोचता है कि कुछ ऐसा है जो अच्छा है, जो सार युक्त है, लेकिन वो भगवान से पृथक है, भगवान से अलग है, तो वो एक भ्रम है। क्योंकि भगवान से पृथक होकर कोई सार युक्त हो नहीं सकता है। सार तो एकमात्र कृष्ण है। जो भी सार युक्त प्रतीत होता है वो मुझसे संबंधित नहीं है, तो इसमें कोई वास्तविकता नहीं है साहब। आप देखिए, आप जिससे भी प्रेम करते हो, आप उससे प्रेम कब तक करते हो? जब तक कि उसके अंदर कृष्ण का एक सार, कृष्ण का एक अंश है। जिस समय कृष्ण ने अपना अंश उसमें से निकाल लिया, फिर आप जब उसको स्पर्श करते हो ना, अगर आप उसको स्पर्श करते हो तो अपवित्र हो जाते हो। उसको शमशान लेकर आने के बाद आप पानी का गिलास नहीं पी सकते जब तक आप उस अपवित्रता को समाप्त करने के लिए स्नान न कर लो। चाहे वो आपका कितना ही प्रिय क्यों न हो, उसे आपको जला देना पड़ता है जब तक उसके अंदर कृष्ण नहीं है। तो आपको जो कुछ भी प्रिय लगता है उसका कारण, जो कुछ सार युक्त लगता है उसकी वास्तविकता यही है कि उसके अंदर कृष्ण है। और भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति की से त्यक्त हो चुकने पर है कि ये भौतिक अस्तित्व जो है वो अगर कृष्ण से पृथक है तो उसमें कुछ भी नहीं है, वो भ्रांत है। किंतु असत्य नहीं है, भ्रांति है। जैसे रस्सी को अगर सांप समझ रहे हो तो सांप तो नहीं है लेकिन रस्सी तो है ना। तो भौतिक अस्तित्व को यदि आनंददायक समझ रहे हो तो आनंददायक नहीं है, सारे युक्त नहीं है, लेकिन भौतिक अस्तित्व तो है। आगे श्री रूपा जी कहते हैं, यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब कहलाती है। अविद्या का अंधकार, संसार में कुछ आपको आनंद देने वाला नहीं है साहब, चाहे कितना ही प्राप्त क्यों न हो। ये संसार में हमको सुख मिलता है ना, चलो मान लिया कि संसार में भगवान ने तो कहा सुखम असुखम अनित्यम, लेकिन हम मानते हैं कि भगवान में सुख, ये संसार में सुख है। तो मान लिया संसार में सुख है, लेकिन यह संसार तो द्वंद्वों से भरा है ना। द्वंद्व का क्या मतलब है कि जहाँ सुख मिलेगा तो उसके पीछे पीछे दुख दौड़ा दौड़ा आ रहा है, जहाँ मान मिल रहा है तो वहाँ कहीं न कहीं आपके लिए अपमान भी प्रतीक्षा कर रहा है। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे प्रसन्नता है तो वहाँ पर अप्रसन्नता भी कहीं न कहीं आपके लिए बैठी हुई है। जहाँ पर मान है वहाँ अपमान है, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ पर सर्दी है वहाँ गर्मी है। ये द्वंद्वों से भरा तो संसार है साहब। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो सुख को नहीं चाहते। सुख की खोज नहीं है। सुख तो साहब किसी शराबी को शराब में भी मिल जाता है। सुख तो हमें सिनेमा की फिल्म में भी मिल जाता है। सुख नहीं प्रभु, हमें तो आनंद की आवश्यकता है। और आनंद केवल सच्चिदानंद गण भगवान की शरण में आकर ही संभव है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती वह माया है। ये भगवान कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि मुझसे भिन्न है तो वो माया है, माया ने जकर लिया तुमको। जीव आत्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी ब्रह्म है। ये सोचते कोई भाई आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का अस्तित्व है। और वो अस्तित्व कहाँ है? वो आत्मा के रियल घर में, जहाँ पर उस आत्मा की रियलिटी है, वहां पर उसका अस्तित्व सुषुप्त अवस्था में है। जो ये सोचते भगवान रूप विहीन है, भगवान का कोई साकार स्वरूप नहीं है, तो वो भी ब्रह्म ही है, भगवान है और भगवान का स्वरूप भी। श्रीमद् भगवद गीता 2.12 में भगवान कहते हैं, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनादिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। कभी भी कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था और ना ही ये राजा नहीं थे, और ना ही भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे या राजा नहीं। मतलब भगवान घोषणा करते हैं कि हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता, हम मिलकर एक नहीं हो सकते, हम इंडिविजुअल भगवान के हिस्से हैं, हम भगवान की हम यष्टि आत्मा हैं, पृथक रूप से भगवान के सेवक हैं। तो भगवान ने युद्ध भूमि स्थित होकर कहा है कि अर्जुन के समक्ष खड़े हुए योद्धा तथा भगवान स्वयं इसके पूर्व भी विद्यमान थे, वे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी विद्यमान है और भविष्य में भी विद्यमान रहेंगे, और वर्तमान देह के विनष्ट हो जाने पर और भवबंधन से छुटकारा पा लेने पर भी इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीव आत्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं और इन दोनों के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। अरे अगर साकार रूप ही नष्ट हो जाएगा तो फिर मुक्ति का आनंद किस स्वरूप में लेंगे? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थित, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना ही मुक्ति है साहब। यदि लीन हो जाएंगे किसी में, लीन हो जाने के बाद क्या आनंद आएगा उस मुक्ति का? मुक्ति को तो तभी हम एंजॉय कर सकते हैं जब हम कृष्ण को प्राप्त कर लें। कृष्ण को प्राप्त करके उससे प्रेम करने का आनंद ही तो मुक्ति है, और कृष्ण के अंदर लीन हो जाएं, अपने आप को फना कर दें, अपने आप को समाप्त कर दें, तो क्या आनंद आएगा? यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल माया का प्रभाव जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब स्वरूप है, भगवत कृपा से दूर हो सकता है। कैसे दूर हो सकता है? भगवत कृपा से। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, न ही चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का असली स्रोत तो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के दिव्य स्वरूप दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है, और यही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों में प्रतिबिंबित होता है। यथा सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश। अतः परमात्मा से संबंधित होकर आत्मा की सत्ता भी ब्रह्म है, और परमात्मा से असंबंधित होकर आत्मा की सत्ता भी ब्रह्म है, और मैं परम हूँ, ये झूठा दावा उसी माया का अर्थ अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का ही अंतिम पाश है। साफ साफ श्री प्रभुपाद जी बहुत सरल शब्दों में बता रहे हैं कि जो कुछ भी प्रज्वलित है, प्रकाशमान है, उसका कारण कृष्ण है, और भगवान से असंबंधित होकर आत्मा की कोई सत्ता ही नहीं, आत्मा को पावर केवल कृष्ण की ओर से प्राप्त हो रहा है, वरना तो कोई उसके अंदर शक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं। और ये तो झूठा दावा ही है कि मैं परम हूँ, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हम परम नहीं है, हम परम के दास हैं, यही हमारा वास्तविक अहंकार है। भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश यही होता है कि जीव अपने आप को भगवान के समान या भगवान के समान शक्ति प्राप्त कर लेने के लिए सक्षम, उनके अंदर लीन होने का दावा करता है। सबसे बड़ा अंतिम पाश माया का यही है। वेदांत सूत्र प्रारंभ में ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, अतः समस्त जीव आत्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है और अन्य समस्त जीव आत्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे भगवान ने कहा, प्रलय से पहले मैं था, सृष्टि से पहले मैं था, सेंटर में भी मैं रहूंगा और प्रलय के बाद भी मैं, और हर एक वस्तु भगवान की ही सत्ता पर टिकी हुई है। भगवान के माध्यम से ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुए और जितनी भी जीव आत्माएं की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने की, तो भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक जीव आत्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु यह परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीव द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा ब्रह्म है। इस निष्कर्ष को इस श्लोक में स्वीकार किया गया है। बहुत ही सुंदर श्लोक प्रभुपाद ने, प्रत्येक जीव आत्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं, असल में जीव आत्मा स्वतंत्र नहीं है। उसको जो एक क्षणिक स्वतंत्रता दी है भगवान ने कि आप क्या करना चाहते हो करो, अपितु परम पुरुष भगवान में नीत वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होता है। ये तो भगवान का क्योंकि जीव अंश है इसलिए उसको ये स्वतंत्रता दी गई है, भगवान की कृपा अनुकंपा है। वास्तव में तो भगवान जो ये जीव है वो अपने कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए तो बद्ध जीव आत्मा है। एक तरफ से बद्ध जीव आत्मा है और दूसरा क्या बोलता है, स्वतंत्र है। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा ब्रह्म है। बद्ध है अपने कर्मों के अनुसार, जिधर फेंका जाता है, किसी गटर के कीड़ा बना दिया जाता है तो बद्ध है ना, तो बद्ध जीव आत्मा स्वतंत्र कैसे हो सकता है। लेकिन स्वतंत्रता है भी सही, और वो क्या है, वो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा की स्वतंत्रता। जब जीव स्वयं इस बात के लिए हृदय से उत्साहित हो जाए मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो फिर तो भले वो पशु योनि में ही गजेंद्र के स्वरूप में क्यों ना आया हो, जर भरत बन भले वो हिरण के रूप में आ जाए, चाहे वो किसी भी अवस्था में है, वो स्वतंत्र है कृष्ण को समर्पित करने के लिए। अल्पज्ञानी पुरुष ब्रह्मग्रस्त हो जाते हैं, इसीलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि, सूर्य चंद्र बिजली इत्यादि के आभायुक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। कोई चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे का तैसा बना रहता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, भले सोचे कि आत्मा नहीं है शरीर के अंदर, ये तो रसायनों से मिलकर केमिकल्स का एक मजमुआ है, लेकिन उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है, जब आत्मा निकल जाती है तो वो सारी चीजें जो तंत्र है, जो शरीर है, उसके अंदर वही सारी चीजें बैठी होती है, सारी चीजें हैं, हृदय भी है और ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है वो भी होता है, उसके अंदर लंग्स हैं, उसके अंदर किडनी है, उसके अंदर नेत्र हैं, उसके अंदर हर चीज है, वाइंस है, हर चीज है, क्यों नहीं, क्यों वो मृतिक शरीर कहलाता है। वो भले नहीं मानते आत्मा के अस्तित्व को, वो भले नहीं मानते हैं कि भगवान के कारण है, लेकिन फिर भी उनके ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है, उसके लिए मानो मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन होती है, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता, है ना? वो सोचता है इसका दिमाग है, देखो दिमाग कैसे काम करता है, केवल दिमाग से कुछ नहीं होता, दिमाग तो मृतिक शरीर का होता है। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है और अंततः ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान कहते बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों को बुद्धि मेरे कारण प्राप्त होती है। शक्ति बलम बलवताम चाम, बलवानों को शक्ति मेरे कारण प्राप्त होती है। तो ये साफ अज्ञान ही है ना कि परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है, अंततः ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया है, आच्छादिक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती है। माया की दो अवस्थाएं हैं, आच्छादिक प्रभाव तथा क्षेपक प्रभाव। क्षेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है और आच्छादित प्रभाव से वह अल्पज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे वे परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिसने सर्वपरि जीव आत्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया है, अज्ञानी बना रहता है। अब देखो दो माया की यहाँ पर धारणाएं बताई गई हैं, दो अवस्थाएं बताई गई। एक तो क्या है, आच्छादिक प्रभाव, और दूसरा है क्षेपक। क्षेपक में क्या होता है, माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है। क्षेपक प्रभाव जब आता है तो जीव को भगवान नहीं दिखता, माया के प्रभाव से केवल संसार दिखता है और संसार की ओर आकर्षित हो जाती है। बस उसको यही लगता है कि यही संसार ही मेरे आनंद, मुझे आनंद प्रदान। आज हम सब क्षेपक माया के इस प्रभाव में तो हैं, है ना, अविद्या के अंधकार में घिरे हुए तो हैं। कितना बताया जाता, फिर भी लगता तो यही है कि कभी मेरे शरीर को आनंद मिले, कभी कुछ ऐसा प्राप्त हो जिससे मैं सुखी हो जाऊं, ये खा लूं, वो पहन लूं, वहां चले जाऊं, ये प्राप्त कर लूं तो मुझे आनंद आएगा। तो ये माया का प्रभाव ही तो है, क्योंकि भगवान की प्रति कहीं और आनंद आना ये सब संभव नहीं है। और आच्छादिक प्रभाव से वह अल्पज्ञानियों की आंखें ढक देती है ना, आंखें लंग देती है। दिखता भी है उसको कि जब तक इस संसार से मैंने खुशियां प्राप्त करने की कोशिश की, तब तक मुझे केवल दुख ही प्राप्त हुआ। फिर भी इसी संसार में तो ढूंढ रहे हैं ना सुख को, कहाँ कहाँ दिल करता है, कहाँ हमारा मन लगता है कि भगवान के नाम में सुख है। शास्त्र कहता है कि वो सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। महाप्रभु ने कहा चैतो दर्पण मार्जनम बहुना बहु, चैतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, कहीं और आनंद आएगा नहीं। जो आनंद है वो इसी कृष्ण के नाम में रखा हुआ है। और हमारा क्या होता है, हम सोचते हैं माला जप तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा बहुत ऐसा कार्य है जो थका देने वाला है, जो पूरा दिन चलता है, ये मेरी माला समाप्त नहीं होती। कहाँ आनंद का अनुभव किया हमने नाम जप में, आनंद का अनुभव नहीं। ये माला करना तो केवल माला ऐसा है, जैसे संत तुलसीदास कहते हैं, माला फेरत जुग भया मिट्यो न मन को फेर। हृदय तो अभी तक संसार में लगा हुआ है साहब, माला नाम निकले भगवान का, और भगवान के नाम के प्रति हृदय भगवान की ओर आकर्षित न हो, कृष्ण में प्रेम नहीं उत्पन्न हो, तो क्या लाभ प्राप्त किया है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो माया ने आंखों में पट्टी बांध ली है। नाम जप कर रहे मैकेनिकली, ये पूजा तो कर्म बना दी, बस अपना एक नित्य कर्म हो गया, और माला पूरी करने के बाद एक आनंद का अनुभव कि हाँ आज की माला पूरी हो गई। ये जब तक नाम को हम एक साधन समझते रहेंगे ना, तब तक उसका वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होगा साहब। ये नाम साधन नहीं है। जब जब आपको नाम जप करने का समय मिले,
जब जब आपके मुख से महामंत्र का उच्चारण हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये आपकी आपकी साधना या आपका कोई कर्म नहीं है जिसके कारण भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए आपको अवसर मिल रहा है, नहीं, ये तो कृष्ण की कृपा है, अहितु की कृपा है, इसलिए तो कहा जाता है, इसीलिए तो संत कहते हैं कुर्बान जाऊं सवेला सुहाना जीते तुमरे द्वारे आया। जब जब हम भगवान की कथा श्रवण करने के लिए भगवान के मंदिर में जाते ना, तो उसमें हमारी योग्यता नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है कि उसने हमें इस योग्य समझा कि हम उनकी कथा सुनने के लिए आए हैं, है ना। यूं तो इनविटेशन सबको मिलता है ना, हर कोई के पास इनविटेशन जाता है कि वो भगवान की कथा सुनने का आए आए, लेकिन आते कितने लोग हैं जिनको भगवान जाता है और जिनके मुख से नाम निकलता है, तुद बावे ता नाम जपावे आपे कृपा। जब भगवान की कृपा होती है ना, तब निकलता है मुख से नाम। ये कोई सरल विधि नहीं है, कोई प्रयास कर ले, अपने प्रयास से तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकता वो। तो जब भी नाम निकले तब एक बात याद रखना कि आज भगवान ने बहुत कृपा की कि मुख से नाम निकल रहा है। जब जब नाम जब को क्रिया या साधना ना कहकर भगवान की कृपा समझेंगे ना, तब उसकी अनुभूति होने लगेगी। और इस संसार में भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई कृपा बची नहीं। अब हर जगह जिस जहाँ तक आपकी नजर जाती है, जो कुछ आपको देखने में आता है, जो कुछ आपको सुनने में आता है, जो कुछ आप क्रिया करते हो, उसमें अशुद्धता ही अशुद्धता रहेगी, है ना। अब कहने वाले वक्ता में प्योरिटी नहीं है, सुनने वाले श्रोता में प्योरिटी नहीं है, कोई भी साधन हम करते हैं उसमें कौन सी प्योरिटी है। इस संसार में अब अगर कुछ शुद्ध रह गया है, कुछ प्योर रह गया है, कुछ ऐसा रह गया है जो वास्तव में भगवान से अभिन्न है, तो केवल भगवान का नाम है। इसी नाम जो है उस पे इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि यही नाम कल्याण करेगा और करके रहेगा। ये तो नाम का नाम के अंदर एक ही गुण है कि वो आपका कल्याण करने के लिए है। ये तो स्वभाव है नाम का, है ना। यही तो स्वभाव, जय जपे कृष्ण तार उपजे भाव। जो कृष्ण जब मुख से निकाल लेता है ना, तो हृदय के अंदर बैठा हुआ कृष्ण उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं कैसे इसका उद्धार करूं कि इसने मेरा नाम लिया है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान ने भगवत गीता 16.18 से लेकर 20 में कहा है, ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाले आसुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बार बार डाल दिया जाता है। इससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर में करते रहते हैं, किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से, जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया है, या अर्जुन की शिष्य परंपरा से, जिन्हें स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, प्रबुद्ध होते हैं। इस भगवान का उसे भगवान का यह कथन मान्य होता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि वो बुधा भाव समन, जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या सोचते हैं, भगवान कृष्ण ही समस्त जीवों आध्यात्मिक और भौतिक जगतों के स्वामी हैं, उनसे आगे और कुछ है ही नहीं। भगवान समस्त तेजों तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है पलित है और पालित है और विनाश को जो प्राप्त होता है, उन सब के मूल स्रोत हैं। जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेता है, वही वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होता है। यद्यपि अल्प ज्ञानी की के समक्ष भगवान की प्रतिबिंब शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु विचारवान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूरतर स्थान में रहते हैं, इसी प्रकार कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है, प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है। जगत्यो नैरनिच्छस्य चिदानन्दैकरूपिणी पुंसोस्ति प्रकृतिर्नित्या प्रतिच्छायैव भास्वतः अचेना अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मनः अकरोत् विश्वमखिलम् अनित्यम् नाटकाकृतम्। इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचौंध करती हुई भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है, मतलब वो भगवान है, वो परम पुरुष है और उनकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में, उनका एक प्रतिबिंब रूप में क्या करता है, चकाचौंध करती है। वो प्रतिबिंब क्या, माया ही तो है, भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है। प्रकृति के ऐसे भ्रम पूर्ण कार्य से मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। और प्रकृति के ऐसे ब्रह्मपुर कार्य मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है। मृत होता है, कुछ संसार में सार नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान की शक्ति इसके अंदर होती है तो वो गति करने लगता है। और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। अब अज्ञानी जो नेत्र हैं, वो संसार में भले कितना ही बड़ा बड़ा विज्ञानी क्यों न हो, लेकिन उसको लगता कैसा है कि भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह लगता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है। ऐसे निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता द्वारा होती है, यह स्पष्ट है कि जीव आत्माएं भी भगवान की ज्येष्ठा शक्ति यानी परा प्रकृति के प्रदर्शन स्वरूप हैं। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठा शक्ति यानी अपरा प्रकृति का दर्शन है, का प्रदर्शन है, भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है, जितना कि अग्नि तथा ताप में। अग्नि में ताप होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है। अल्पज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती और वह झूठे ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताता रहता है। अग्नि की इस शक्ति यानी ताप को सीधे अग्नि ना कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीव आत्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान में होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीव आत्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है और जो मूल प्रकाश है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी साहब साहब बताए अग्नि और अग्नि का ताप। अग्नि का ताप क्या है, उसकी शक्ति है, लेकिन वो अग्नि तो नहीं है ना, तो उसको सीधे अग्नि ना के उसका प्रतिबिंब कहा गया है। उसको ये सोचना चाहिए कि उसका ही प्रतिबिंब है, उसका ही छाया है। तो हम सब जीव आत्माएं भगवान कभी नहीं बन सकते। जीव आत्माएं सदैव भगवान की सत्ता पर ही, उसकी शक्ति पर ही आश्रित होती है और जो मूल प्रकाश वो भगवान ही है। इस भौतिक जगत की तुलना अंधकार से की जा सकती है क्योंकि वह वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है और अंधकार में जीव आत्माओं की कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा। भगवान की दोनों शक्तियों की अपराश्रिता को माया या भ्रम कहा गया है। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से तो अंधकार को नहीं खत्म, रियल प्रकाश होना चाहिए, उसका केवल प्रतिबिंब नहीं होता है। इसी प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंबित प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है, जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त न हो। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, जीव अपनी बुद्धि से इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल सकता। तो भगवान ने कहा, मेरी शरण में आ जाओ, मैं जब तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा तो ही तुम बाहर निकलोगे। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है। सूर्य का यदि केवल प्रतिबिंब होगा तो क्या सूर्य वो प्रतिबिंब के अंधकार को दूर करेगा? किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती, इसलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छुओं से भय लगता है। भले ही वे वहां पर हो ना हो, किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं और सांप बिच्छुओं का भय भी तुरंत ही चला जाता है। अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों की नहीं जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते हैं। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण ऐसे पुरुषों से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता, आस्तिक नहीं है। ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है, और जो ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत है और वे सारे के सारे अंधकार से पूर्ण है। सभी जीव ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है। ब्रह्मा से लेकर निगरणीय चींटियां तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं, और उसके लिए कि वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सकें, भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है, किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टॉर्च के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता है ना। अगर देखो, सूर्य तो हर समय होता है। अब रात के समय सूर्य नहीं दिख रहा है, आप कोई दीपक जलाओ कि भाई भले सूर्य नहीं दिख रहा है, मैं इस टॉर्च के द्वारा सूर्य को ढूंढ दिखाऊंगा कि सूर्य होगा ना, जाहिर है कभी तो दिखेगा, दिखता है, अभी नहीं दिख रहा है। तो टॉर्च जलाओ या सूर्य के देखने के लिए दीपक जलाओ या कुछ भी जलाओ, क्या सूर्य प्रकट होकर दिखेगा क्या? नहीं, सूर्य तो तभी दिखेगा जब स्वयं प्रकाशमान होगा, है ना। भले ही वह कितना ही शक्तिशाली अस्त्र या फिर टॉर्च हो, उससे नहीं देख सकते। सूर्य अपने को स्वयं प्रकाशित करता है। अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के क्रम को, के कर्म को, अथवा भगवान को अहितु की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता, ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यहाँ इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनके अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है, और इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त हो, अपितु जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है, वह अंतरंग शक्ति के द्वारा कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यहाँ से हमें यही समझना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी दिखता है अगर हम उसको भगवान से पृथक समझते हैं तो वो केवल ब्रह्म है, क्योंकि भगवान से पृथक किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। भगवान ही उस वस्तु या व्यक्ति के अंदर बैठकर हमें आकर्षित करते हैं और हम उसी से प्रेम लगा बैठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान है। तो केवल भगवान की कृपा से ही ये अज्ञान समाप्त हो जाएगा, हृदय पवित्र होगा और हमारा मन भगवान की इच्छा करने लगेगा। आज हमारी इच्छा ही तो दूषित है ना? इच्छा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ आपकी इच्छा भगवत प्राप्ति की हो जाएगी तो भगवान स्वयं, भगवान ने कहा मैं आपकी कमी को पूरा करूंगा। जो जिस चीज की कमी है, उस रास्ते की जो दुश्वारियां हैं, उसको समाप्त करने का ठेका भगवान ने, बस एक विल बनानी है कि ये अज्ञानता मिट जाए और केवल भगवान की ही भगवान को ही प्राप्त करने के हृदय में इच्छा रह जाए। और जैसे जैसे हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो ये संसार बहुत तुच्छ लगने लगेगा। जिन जिन वस्तुओं के अंदर हमें प्रेम है वो वस्तुएं बहुत निगरणीय लगने लगेंगी और हम अपने प्रेम का केंद्र केवल कृष्ण को बनाने में समर्थ हो जाएंगे यदि हम इन शब्दों को श्रवण करेंगे। ये केवल श्रवण ही मंगल है, श्रवण मंगलम। ये जैसे जैसे हम श्रवण करेंगे उससे हमारे जीवन के ये जो भ्रांति है कि कृष्ण के अतिरिक्त भी कहीं आनंद है, कहीं सार है, वो भ्रांति समाप्त हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।